In progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہم کلاس میں آخری چیز کیا پڑھ رہے تھے؟ جی، دیتے رہتے ہیں کوئی اور ہے؟ آخری کلاس میں کیا بات ہوئی تھی؟ چھوٹے بچے بھی اب کوشش کیا کریں، بڑے بچے ہو. آج وہ انکل بتا رہے تھے کہ ہمارے چھوٹے بچے بڑے ہو گئے. بہت اچھی بات ہے، بچے بڑے ہی ہوتے ہیں. ہم بوڑھے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، آپ لوگ واپس آ گئے؟ ماشاء اللہ، خیریت سے آ گئے. صحیح، انشاء اللہ. چلے پھر محمد امان بھائی سے پوچھتے ہیں.
آخری بات تو کر رہے تھے وہ ہم مشکلات ڈسکس کر رہے تھے، تو سب سے آخری مشکل جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ محمد بن ابی بکر انہوں نے جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے ابو بکر صدیق، تو انہوں نے ایسے معاملہ کیوں کیا؟ تو ان کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، پھر ڈسکس کیا تھا کہ خلافت کیوں نہیں چھوڑی ہے، مانا نہیں ہے
صحیح. نہیں، بس صحیح. ہاں، یہ پچھلی کلاس میں جو باتیں ڈسکس ہوئی تھیں، ان میں سے بالکل شروع کی بات یہ تھی کہ دو سوال آئے تھے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ایسے کیوں ہوا. تو اس کے پھر ہم نے جواب ڈسکس کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، خود تو صحابی نہیں تھے، لیکن ان کے والد صاحب تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل صحابی تھے. تو اتنے اچھے باپ کے بیٹے اور اتنے قریب ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کام کیوں کیا، اس کو ہم نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کری تھی. اور دوسرا بھی تو ایک سوال تھا، وہ خود مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. ایک دوسرا سوال بھی کسی نے کیا تھا جس کا کہ ہم نے جواب ڈسکس کیا تھا، یاد ہے کسی نے؟ ہاں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ جو ایک طالب علمانہ سوال کسی نے کیا تھا کہ ہاں، اگر وہ خلافت چھوڑ دیتے اور لوگوں کی نصیحتوں کو یا مشوروں کو قبول کر لیتے تو امت کے اندر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہی نہیں. تو اس سے تو یعنی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ کھلا ہے. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہی از ریسپانسبل فار دیم. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب ڈسکس کیا تھا پچھلی کلاس کے اندر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو لوگ اعتراضات اور کرتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ رقمیں دے دیا کرتے تھے اور عہدے دے دیا کرتے تھے، اور وہ باقی اشکالات بھی ہم نے جو کتاب میں حضرت نے ڈسکس کیے ہیں وہ بھی پھر ہم نے ڈسکس کیے تھے، پڑھ لیے تھے. اور پھر اس ٹاپک کو یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کو ہم نے پھر مکمل کر دیا تھا، وہ اشعار پڑھ کے بھی، جو شاعر غالباً کون ان کا نام ہے، نیازی، انجم نیازی نام بکات ہوں، تو وہ بڑے اچھے اچھے اشعار کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ان کے پڑھ کے. پھر تو اب جو ہے وہ آبویسلی تیسرے خلیفہ راشد، ان کا معاملہ جب ہم نے پڑھ کے مکمل کیا ہے تو پڑھنے کو تو بہت ساری چیزیں تھیں، مکمل اپنے اپنے حساب سے ہم نے کر لیا، ورنہ بہت بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کور کر سکے. تو اب چوتھے خلیفہ راشد وہ کون تھے، یہ تو کوئی بھی بتا سکتے ہیں. جی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، یہ تو خلفائے راشدین میں اب ہم چوتھے پہ پہنچ گئے، تو ان کو پڑھ کے پھر مکمل ہو جائیں گے خلفائے راشدین. لیکن ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ صرف خلفائے راشدین کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ اکرام کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، تو خلفائے راشدین کے بعد آپ کو بتایا تھا نا کہ جو نیکسٹ بگر کیٹیگری بنتی ہے صحابہ اکرام میں، وہ کون سی کیٹیگری بنتی ہے آپ بتائیے؟ پیچھے नहीं, सहाबाए कराम के अंदर ही जो नेक्स्ट कैटेगरी बनती है अंकल, तो थोड़ी आप बताइए। अशराए मुबशरा, ठीक है ना, 10 जो जिनको जन्नत की बशारत थी तो उनकी कैटेगरी बनती है। तो हम बाकी अशराए मुबशरा के बारे में बात करेंगे और उनके बाद फिर देखें अल्लाह की तौफीक से, फिर जरा ज्यादा मुश्किल है। फिर कौन? बदरी सहाबी, ठीक है। फिर बदरी सहाबी के बाद कौन सी कैटेगरी बनती है?
अच्छा
उहद के तो वैसे तो नहीं बनती, मतलब है बैत रिजवान वाले, ठीक है, और वो तो बहुत सारे थे माशाल्लाह, 4,000 से भी ज्यादा। खैर, तो हजरत अली मुर्तजा रजील तआला अन के बारे में भी जो बयान है ना, वो भी आशरा मुबशरा वाली हदीस से ही हम शुरू करते हैं कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकरन फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहतु फिल जन्ना व जुबैर फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व सादु व सादुन फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास रतारन, व सईद फिल जन्ना व अबू उबैदता इब्न जर्राही फिल जन्ना। तो ये अशरम बशरा के बारे में उन 10 के 10 के नाम के साथ यह हदीस सुनन तिरमिजी के अंदर मौजूद है। तो अब हजरत अली रतान के बारे में हम बात शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनके इनकी नबी अलैहिस्सलाम से क्या रिश्तेदारी बनती थी, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। सबको इंशाल्लाह मालूम होगा ही कि नबी अलैहिस्सलाम के, वो तो सभी को मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलाम के जो सगे चचा थे अबू तालिब, ये उनके बेटे थे, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के फर्स्ट कजन बने, ठीक है। अच्छा, ये जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई गारे हिरा में, जबल नूर के ऊपर, ठीक है, तो वही नाजिल हुई, तो नबी अलैहिस्सलाम उस पूरे वाकये के बाद नीचे उतरे और अपने घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुंचे, और आप बहुत खौफ की हालत में थे, हत्ता कि सर्दी लग रही थी और जैसे कोई कांप रहा होता है ना, खौफ से ठुठर रहा होता है सर्दी से, ये हालत थी नबी अलैहिस्सलाम की। और आप ने खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मेरे ऊपर जो है वो चादर चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो, ठीक है। तो खदीजतुल कुबरा तआला से फिर आप ने बात करी, और खदीजतुल कुबरा तआला उन्होंने उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम किया और आप को अल्लाह का नबी मान दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने जब नमाज का वक्त हुआ, तो एक किताब में लिखा हुआ है कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो पीछे नमाज पढ़ रही थी, ठीक है। अब ये नमाज वो वाली नमाज वैसी नमाज नहीं थी जैसे कि हम पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज, वो तो मेराज के अंदर फर्ज हुई थी और उसकी तफसीलात भी नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में बताई थी, लेकिन फिर भी एक दर्जे की नमाज जो है, कोई इबादत की कोई शक्ल, वो नबी अलैहिस्सलाम को गालिबन सिखा दी हजरत जिब्रील ने, तो उस तरह से अलैहिस्सलाम ने तो उस तरह से नमाज पढ़ रहे होंगे, तो खदीजतुल कुबरा जो है उनके पीछे नमाज पढ़ रही थी, ठीक है। तो अली रतान ने उन दोनों को देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो हैरान हो गए, ये कौन सी नई चीज नया काम कर रहे हैं। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप गालबन फर्स्ट टाइम आए ना क्लास के अंदर, तो इस क्लास में ना अपने माइक को म्यूट करके रखें, ठीक है, म्यूट का बटन दबा दबा करके रखें, उसको छोड़े नहीं, अनम्यूट ना करें। अच्छा, तो पूछा कि भाई ये क्या कर रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी इस्लाम के बारे में बताया कि मेरे पास फरिश्ता आया था और उन्होंने मुझे ऐसे बताया, ठीक है, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, ठीक है। तो अली रतान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ दावत दी, तो अली रतान उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने अब्बू से पूछ के बताता हूँ, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने है अभी तो बताया था उनके अब्बू कौन थे, उनके अब्बू ख्वाजा अबू तालिब, ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम सलाम के सगे चचा थे ना, ठीक है। तो अबू तालिब तो यानी उनसे मैं पूछ करके बताऊंगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम ना उनसे मत पूछना, तुम ऐसा करो, तुम गौर करो, सोचो और इसके बाद फिर मुझे जवाब देना, ठीक है। अच्छा, ये जो अली रतान थे, ये हजरत अबू तालिब की, वो मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे और इतना सपोर्ट करते थे ना, कि अगरचे कि वो मुसलमान नहीं थे लेकिन ही इज प्रॉबली द ओनली नॉन मुस्लिम, वाहिद गैर मुस्लिम थे कि जिनके बारे में हमारे मशाइख जो है ना वो कभी हजरत का लफ्ज भी इस्तेमाल कर देते हैं और फारसी के अंदर ख्वाजा का लफ्ज भी इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे रिस्पेक्टफुली, इवन दो ही नेवर बिकेम ए मुस्लिम। और काफिर की ताजीम जो है इन जनरल दीन इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है, ठीक है। कल ये मुफ्ती साहब से भी क्लास में सुन रहे थे कि काफिर का जब इंतकाल होता है तो आप उसके जनाजे के साथ चल के नहीं जा सकते, ये मना है, क्योंकि जनाजे के साथ चल के जो कब्रिस्तान जाते हैं ना, ये जनाजे की ताजीम में किया जाता है, इज्जत अजमत, ठीक है, और काफिर की ताजीम करना हराम है। तो किसी और के साथ नहीं करते लेकिन ख्वाजा अबू तालिब के साथ करते हैं, वो उसकी खास वजह बस यही है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ इंतहाई दर्जे की मोहब्बत और सपोर्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम को खुद इतना अफसोस हुआ जब उनका इंतकाल हो गया कि पूरा साल जो है वो आमुल हुजन कहलाता है, जिस साल उनका इंतकाल हुआ और खदीजतुल कुबरा जो था उनका इंतकाल हुआ, ठीक है। तो ख्वाजा अबू तालिब जो थे ना, ये अच्छे खासे गरीब थे, ठीक है, और इनकी औलाद जो थी वो बहुत सारी थी, कई इनके बच्चे बच्चियां थी, ठीक है, तो इनसे जो है ना वो पूरा का पूरा फैमिली मैनेज नहीं हो पा रही थी कि सबको जो है वो अच्छे तरीके से उनकी तरबियत कर सकें, उनको जो है खाना पीना पिला सकें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोया के अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, कि आप इनको मुझे दे दें, हैं तो वहीं करीब करीब ही सारे रहते हुए, ठीक है, तो ये मेरे घर पे रहेंगे और मैं इनकी जो है ना वो खाने पीने का इंतजाम भी करूंगा और इनकी तालीम तरबियत का भी इंतजाम करूंगा, ठीक है। तो अली रतान जो है फिर नबी अलैहिस्सलाम के घर में रहना शुरू हो गए थे। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी तो बहुत गरीब थे, ठीक है, तो उन्होंने फिर कैसे अडॉप्ट कर लिया और कैसे जो अली रतान की परवरिश करनी शुरू कर दी, कैसे कोई और सारे चले आप बताएं।
उनकी शादी हो रही थी हजरत खदीजा से हो रही
हाँ माशाल्लाह, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम की, और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सारा माल पैसा जो था उन नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था, ठीक है ना, कि अब आप ही इसको मैनेज करें, जो चाहें आप इसके साथ करें, ठीक है। तो इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारा माल पैसा आ गया था, ठीक है। तो अली रतान जो है वो इनके घर में आकर के फिर रहना शुरू हो गए थे, और आपको पता है कि उस वक्त तक पर्दे का अहकाम नहीं आया था, पर्दे का हुक्म आया नहीं था, तो औरत मर्द जो है वो उनके आपस में कोई पार्टीशन करने की और कोई जो है वो छुपाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो एक ही घर के अंदर हजरत खदीजा कुबरा जतान भी रहती थी और अली जतान भी रहते थे, अगरचे एक दूसरे के गैर महरम थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म ही नहीं आया था उस वक्त तक, तो भाई अल्लाह का हुक्म आएगा तब करेंगे ना, हुक्म नहीं आया तो फिर खामखा थोड़ी अपनी तरफ से थोड़ी हुक्म लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये नबी अलैहिस्सलाम को इतना करीबी देखते थे, दिन रात देखते थे नबी अलैहिस्सलाम को, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपस में से वाकिफ थे और एक बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग पैदा हो गई थी ना इन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो जब ऐसा क्लोज ताल्लुक हो जाए ना, तब ये बात समझ में भी आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अब्बू से पूछने की क्या जरूरत है ना, तुम मुझे जानते हो ना, मुझे देख रहे हो ना, ठीक है, तो तुम सोचो इस बात के ऊपर कि मैं जो बात कह रहा हूँ क्या वो झूठ हो सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बात मान ली और फिर फरमाते हैं कि मैं सारी रात सोचता रहा कि नबी अलैहिस्सलाम कितने अच्छे हैं, कितने जो है वो सच्चे हैं, कितने अमानतदार हैं, कितने दयानतदार हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, झूठ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल करी, हालांकि सिर्फ 8 साल के थे उस वक्त, ठीक है, और सोचते रहे हत्ता के अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और ईमान कबूल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये इस्लाम में दाखिल होने वाले दूसरे इंसान बन गए और बच्चों में सबसे पहले बच्चे बन गए, 8 साल का जो होता है वो बच्चा ही कहलाता है, आप सब माशाल्लाह अक्सर आप में से। तो औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा अन्हा बनी, बल्कि पहली इंसान हजरत खदीजतुल कुबरा अन्हा बनी, ठीक है, इस्लाम लाने वाली, और बच्चों में ये बने। और फिर मर्दों के अंदर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान के सामने इस्लाम पेश किया, तो उन्होंने तो आओ देखा ना ताओ, है कोई नहीं, मैं किसी से पूछूंगा, मैं गौर करूंगा, मैं सोचूंगा, कुछ भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो नबी अलैहिस्सलाम का फौरन बात मान ली और फौरन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। इसी वजह से आप ने कभी फरमाया भी कि सब ने जो है ना मुझसे दलील मांगी, सब ने मुझसे जो है वो कोई प्रूफ मांगा सिवाय अबू बकर के, ठीक है, औरतों की बात करी ही नहीं, खदीजतुल कुबरा तआला ने भी कोई दलील नहीं मांगी मांगी, ठीक है, और बच्चों में अली तआला ने भी कोई दलील नहीं मांगी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे मर्दों के बारे में, ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक तआला ने कोई दलील नहीं मांगी मर्दों में से। अच्छा, और अली अतान के बारे में फिर बहुत सारी बातें इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो अली अतान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे एजाजात दिए, यानी बड़ी जो है वो डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स अली अतान के पास थी। तो उनमें से जाहिर है बहुत करीबी रिश्तेदार होने का, बच्चों में सबसे पहले मुसलमान होने का, इतनी कम उम्र के अंदर इस्लाम लाने का, और फिर छोटे छोटे वाक़यात जो आप लोगों को यकीनन पहले से भी पता होंगे कि जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म मिला, मदीना तैयबा की तरफ हिजरत का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे कुफार की अमानतें रखी हुई थी, बहुत सारे कुफार की अमानतें रखी हुई थी। कुफार क्या करते थे कि जब वो लंबे सफर पे जाते थे ना, तो वो अपनी कीमती चीजों को, जैसे गोल्ड, सिल्वर, उस जमाने में सिल्वर भी बहुत कीमती चीज होती थी, तो इस तरह की जो बहुत ज्यादा कीमती चीजें होती थी उनको अपने घर पे छोड़ के नहीं जाते थे, क्योंकि उनको एतमाद नहीं होता था कि उनके घर में कोई उनका गुलाम उसको चोरी करके ले जाएगा, या कोई बाहर से आकर के जो है वो चोरी करके ले जाएगा, ठीक है, छीन के ले जाएगा, तो वो मुतमईन नहीं होते थे। तो वो अपनी इन कीमती चीजों को नबी अलैहिस्सलाम के पास रखवा के जाते थे, ठीक है, हालांकि वो नबी अलैहिस्सलाम पे ईमान भी नहीं लेकर के आए थे, राइट, इस मामले में वो ट्रस्ट नहीं करते थे ईमान के मामले में, लेकिन अपनी अमानतों के मामले में ट्रस्ट करते थे। यही तो बात उनके खिलाफ जाती थी ना कि भाई जब तुम बाकी सारे मामलों में ट्रस्ट करते हो तो एक ये ईमान के बारे में तुम क्यों क्यों ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो करते थे इसी तरीके से। तो बहुत सारी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी ही होती थी हमेशा ही। तो जब हिजरत का हुक्म मिल गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रतान को बुलाया अपने घर पे और फरमाया कि देखो ये सारी अमानतें रखी हुई हैं, ये फलाने शख्स की अमानत है, ये उस शख्स की अमानत है, ये उस शख्स की अमानत है, मुझे तो अल्लाह का हुक्म आ गया है, मैं तो जा रहा हूँ मदीना मुनव्वरा, ठीक है, और किसके साथ जा रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक रतान के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, तुम जो है ना, तुम मेरे जाने के बाद कल का दिन जब आएगा तो मेरी इन तमाम अमानतों, ये इन अमानतों को उनके लोगों तक पहुंचा देना, और उसके बाद तुम भी मदीना मुनव्वरा आ जाना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अली अतान को अमानतें सुपुर्द करी, यानी नबी अलैहिस्सलाम भी अली अतान के ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे कि जो उनको जॉब दी गई है ही विल डू द जॉब रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, वरना हर बंदे को तो नहीं आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ना, तो इतने रिस्पॉन्सिबल थे अली अतान। अच्छा, और दूसरा एक और भी काम फरमाया कि ये जो मेरा बिस्तर है ना, इस बिस्तर के ऊपर तुम लेट जाओ, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि उस रात को कुरैश मक्का ने भी प्लान बना लिया था ऑलरेडी, ये सीरत के अंदर हम पढ़ चुके हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, कि उस रात मक्का मुकरमा के जो कुरैश थे सरदार सारे मिले थे, और अबू जहल ने ये तजवीज़ दी थी कि बस इनको हम कतल ही कर देते हैं ना, बस किस्सा पाक कर देते हैं, खलास कतल ही कर देते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, लेकिन कैसे कतल करते हैं, किसी एक की हिम्मत नहीं थी अलग जाकर के कतल करने की, क्योंकि बनू हाशिम जो है पूरा का पूरा कबीला खिलाफ हो जाता, और वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम का रोब था, तो इन्होंने फिर क्या मशवरा किया कि सब मिल करके तलवार चलाएंगे तो किसी एक के ऊपर जो है वो इल्जाम नहीं आएगा, ठीक है, तो किस किस से लड़ेंगे फिर वो लोग। तो अब ये लोग सारे के सारे बाहर आप के घर के बाहर जमा हो गए थे, मुहासरा कर लिया था गोया के घर का, ठीक है, सराउंड कर लिया था। अच्छा, अंदर नहीं घुस रहे थे, उस जमाने के जो आजाद कुरैश के लोग होते थे उनमें इतनी शराफत होती थी कि वो किसी के घर में ना घुसे, तो वो घर में नहीं घुस रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि ये बाहर निकलेंगे तब हम इनको मारेंगे, ठीक है। तो वो तो जब नबी अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो उस वक्त है ना इनको अल्लाह ताला ने सुला दिया, ऊँघ रहे थे बैठ करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी उठाई और मिट्टी फेंकी तो सबकी आंखों के, फिर उसके बाद जो आंखें मलना शुरू हो गए, पता ही नहीं चला कि नबी अलैहिस्सलाम के बीच में से निकल गए, ठीक है, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल गए, लेकिन ये अंदर नहीं घुस रहे थे, बस ये करते थे कि जरा झांक झांक करके ना देखने की कोशिश करते थे कि अभी हैं कि नहीं है, तो उनको कोई लेटा हुआ नजर आता था बिस्तर के ऊपर, हाँ अभी इधर ही है, अभी वो सो रहे हैं, अभी लेटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन असल में वो अली रतन लेटे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम नहीं लेटे हुए थे। तो बहुत बड़ी सआदत की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर इतना ट्रस्ट भी किया, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने बिस्तर पर भी सला दिया, और इनकी बहादुरी की इनको कोई परवाह ही नहीं थी कि मुझे मारें जो भी करें, ही डिड नॉट केयर, इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे। अच्छा, ये इनकी बड़ी सआदत की बात हुई। फिर उसके बाद जो है वो इनकी एक और सआदत कि हमने गजवाए सॉरी सुलह हुदैबिया का वाकया पढ़ा था, ठीक है। वो सारा वाकया कई दफा रिपीट भी हो चुका है सीरत की क्लासों के अंदर। तो उसमें जो सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट लिखा गया था ना कागज के ऊपर, तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था, ठीक है। और उस मौके के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग वाकया अली रतान से रिलेटेड जो था, वो किसी को अगर याद हो तो बताएंगे अली रतान से रिलेटेड वाकया क्या था। चलें आप बताइए।
क्या
क्या लिखा था, लफ्ज क्या लिखा था अब्दुल्ला भाई?
लिखा
मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से लिखा था, इबारत तो वाकई मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन ये हाजा सोलो या क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है वो सुहेल बिन जो उनका नाम था, जो वहां से आए हुए थे कुरैश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो सुहेल ने उधर ही जो है ना वो रोक दिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इसकी इस डॉक्यूमेंट पे साइन करूंगा नहीं, मैं तो नहीं साइन करूंगा भाई, अगर मैं इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लूं तो फिर मसला ही सारा खत्म हो जाएगा। है? हम तो मानते ही नहीं कि रसूलुल्लाह है, ठीक है। रसूलुल्लाह मानने के बाद ना माने ये तो हमसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम करते हैं ये वाला काम, कुरैश मक्का मुशरिकीन है मक्का ये वाला काम नहीं करते थे कि रसूल भी मानते हैं और बात भी नहीं मानते वो कहते हैं जब रसूल मान लिया तो बात भी माननी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दूं जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ, तो इसको पहले मिटाओ, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अली अदा हुक्म दिया कि हाँ भाई बात तो ये लॉजिकल कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है मेरे नाम को मिटा दें। तो अली अदा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, मैं आपका नाम नहीं मिटा सकता मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके नाम को मिटाऊं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म इस वजह से, किस वजह से, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत और मोहब्बत की वजह से उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, ठीक है ना, ये वाला हुक्म। लेकिन ये चूंकि कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि शरीयत का हुक्म हो और अल्लाह की तरफ से वाजिब हो, नबी अलैहिस्सलाम कह रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसके ऊपर कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, ठीक है। वरना अल्लाह का हुक्म तोड़ने पर नबी अलैहिस्सलाम नाराजगी का इजहार ना करें, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये वैसा वाजिब वाला हुक्म नहीं था, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, डॉक्यूमेंट को लिया और जो है ना वो उसको खुद ही इरेज किया, ठीक है, जो भी तरीका था इरेज करने का, और मौजजाती तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम लेकर के खुद जो है ना वो अपना नाम लिख दिया बगैर रसूलुल्लाह के, ठीक है, कुछ इस तरह की भी किताब में लिखा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ इस मौके पे अल्लाह ताला की तरफ से ये मौजजा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने लिख दिया, ये कहीं पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक इंटरेस्टिंग वाकया सुलह हुदैबिया के मौके पर हुआ था। तो लिखना पढ़ना इनको भी आता था, जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आता था, ठीक है, उसी तरह से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी लिखना पढ़ना आता था, वरना और बहुत कम लोगों को जमाने में लिखना पढ़ना आता था। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी लिखी हुई है जो कि आप सबके ऊपर भी बड़ी अप्लाई होती है इसी वक्त है, वो क्या कि ये जो है ना ये नोट टेकिंग किया करते थे, नोट्स लेते थे, ठीक है। तो जब सुनते थे कोई बात तो ना सिर्फ ये कि गौर से सुनते थे बल्कि नोट्स भी लिखते थे, ठीक है। तो अली अतान के पास फिर नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीसें जो हैं वो लिखी हुई मौजूद थी, जो उसी वक्त सुन सुन करके आप रज़ियल्लाहु तआला लिख लिया करते थे, ठीक है। तो इनका नंबर किताब में लिखा हुआ है 786, 786 हदीसें अली अतान के पास लिखी हुई थी। 786 का सुना है? तो वो कहते हैं ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं इसको फॉलो करते, लेकिन बचपन में बहुत है, बिस्मिल्लाह नहीं लिखनी हो तो 7 8 6 लिख दो। 7 8 6 जो है ना वो कोई अदद ही वो है, लाइक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, तो पता नहीं इसकी क्या हकीकत है, मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा किताब के अंदर कि 786 हदीसें हैं, ये तो बड़ा फेमिलियर नंबर लग रहा है, 786, तो ये किधर से आया? लगता है इधर से आया कि अली अतान के साथ तो है ना बहुत ज्यादा वो भी वाले मसले भी लोगों ने लगा दिए ना। ठीक है कि अली अतान को नऊज बिल्ला खुदा बना दिया, या अली अतान को जो है वो सबसे अफजल बना दिया, तो अब अली अतान के से रिलेटेड कोई नंबर मिला, उनका चलो जी बिस्मिल्लाह की जगह जो है वो 7 8 हो सकता है, यो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बहरहाल ये एक आई कैचिंग नंबर था 786 का। तो इनके पास 786 हदीसें लिखी हुई थी जो कि ये नोट टेकिंग में लिखा करते थे। फिर इन्होंने अपना एक कुरान मजीद भी लिख करके तैयार किया हुआ था पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो भी इनके पास लिखी हुई शक्ल में था, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया कि अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, आपने कुरान मजीद भी लिख करके रखा हुआ है। जी
पूरा कुरान मुझे था, तो फिर जब मेरे पास ये वो नुस्खा तैयार कर रहे थे तो अलग अलग जगह से बिहारी से ले लिया।
तो वो तो खाली एक होते ना फिर, तो कुरान मजीद जो है ये तो तवातुर वाली वाली हदीस है ना। ठीक है, तो अगर एक सोर्स से ले लेते तो फिर तवातुर किधर से आता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस सोर्स से भी और दूसरे सहाबा के, तो यानी वो तो पूरा एक बहुत बड़ा सा एक प्रोजेक्ट था ना, सबको इन्वॉल्व किया गया इसके अंदर। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं अबू बकर सिद्दीक के जमाने के सीरत में भी, और शायद उस्मान की सीरत में भी रिपीट किया था उसका। ठीक है, तो इस तरह के नुस्खे जो है वो और सहाबा के पास भी मौजूद थे। अच्छा, फिर उसके बाद अली अतान की बड़ी मशहूर तरीन खासियत क्या है कि ये इल्म में बहुत आगे थे। ठीक है, पिछली चंद क्लासेस के अंदर भी कुदरतन इस बारे में बड़ी बातें हुई हैं कि अली अतान को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया था। ठीक है, तो पिछली क्लासों में इसके बारे में जो बात हुई है, किसी के पास कोई रिकलेक्शन है अली अदान के इल्म के बारे में? बल्कि बयान में भी बात हुई थी, आपके अलावा कोई और थी?
अच्छा,
हाँ, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो है ना, वो तो हमने आपको बतानी भी थी अभी। ठीक है, लेकिन पिछली क्लासेस की रिकलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पिछली क्लासेस में अली अतान के इल्म के बारे में एक बात आप लोगों को बताई थी, वो क्या थी? उनके पास विलायत का इल्म था। हाँ, ये भी बताई थी, सही है। ठीक है, ये एक रिकलेक्शन हो गई, एक जो है वो याददाश्त हो गई। और भी एक बात बताई थी मुस्तफा।
एक
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बाकी
का बाकी इल्म का बड़ा हिस्सा अली अतान के पास था। ठीक है, माशाल्लाह, ये इन्होंने अच्छी बात याद रखी और यहाँ पे हमें बताई। एक और भी बात बताई थी इन्होंने, चले ऑनलाइन लोगों का भी तो हक हक बनता है, इन्होंने जवाब दिया फिक ही इल्म था, फिक ही इल्म। ठीक है, जिसको कि हमने आपको कहा था फिक ही, यहाँ पे अच्छा बच्चियों में भी जवाब आया, फिक ही मसाइल का इल्म था हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास। ठीक है, फिक ही मसाइल के भाई ये ऐसे कैसे, नमाज कैसे पढ़नी है, वुजू कैसे करना है, इसके फराइज क्या होते हैं, इसके वाजिबात, ये सब फिकी मसाइल कहलाते हैं। ठीक है ना, हज का तरीका क्या है, उम्रा का तरीका क्या है, ये फौरन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और भी चीज जो कि इस किताब में हजरत ने मेंशन की है, हजरत जी का तुमने, ठीक है, तो अली अतान के इल्म के ऊपर कि भाई किस किस्म का इल्म था अली अतान के पास। ठीक है ना, तो फिकी मसाइल का इल्म। ठीक है, और मजीद सुनिए कि उनको उस चीज का इल्म था कि कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई। ठीक है, कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, किस वक्त में नाजिल हुई और किस मकसद से नाजिल हुई, यानी शान नुजूल क्या था उस आयत का। ठीक है, आयात का, कुरान मजीद की आयात का शान नुजूल। शान नुजूल कहते हैं ना भाई, कोई वाकया हुआ फिर उस वाकये के हिदायत के तौर, यानी उस वाकये में अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत आई तो वो आयत की शक्ल में आई, तो उस वाकये को शान नुजूल कहते हैं आयत का। ठीक है, तो इनके पास शान नुजूल का इल्म था, इनके पास जो है वो वक्त किस वक्त में नाजिल हुई थी और जो है वो किस मकाम पे नाजिल हुई थी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि यानी जो आयत का शान नुजूल है उनको इतना मालूम था कि जिस आयत का पूछोगे वो इस आयत का शान नुजूल बता सकते थे। अल्लाह ताला ने उनको कुरान मजीद का बहरे बेकरां बना दिया था। ठीक है ना, यानी एक ऐसा समंदर बना दिया था जिसका कोई किनारा नहीं होता, इतना बड़ा समंदर बना दिया था। ठीक है, तो ये जो इल्म कहलाता है, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी में अगर आप इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो क्या होगा? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म, मुहावरतन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म, ये फैक्ट है ना, वेयर व्हेन व्हाई, ठीक है, ये फैक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और भी डब्ल्यूज हैं, ठीक है, जिनसे के क्वेश्चन किया जाता है फिर उसका आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म होता है, ये अली रतान के पास बहुत ज्यादा बहरे बेकरां की तरह से इल्म था। ठीक है ना, तो उमर रतान के पास कौन सा इल्म था और अबू बकर सिद्दीक रतान के पास कौन सा इल्म था? ठीक है ना, उसको कहा जाएगा कौन सा इल्म? नबुवत का इल्म। ठीक है, वो विलायत नबुवत, तो आपने पहले भी विलायत कह दिया तो अब जाहिर नबुवत बच गई। ठीक है, इल्म नबुवत भी इसको कहते हैं। इसको आम जुबान में मारिफत का इल्म कहा जाता है, मारिफत का इल्म। ठीक है ना, यानी रिकग्नाइजिंग अल्लाह सुब्हान तआला क्वालिटीज, अल्लाह अजमत, ठीक है ना, अल्लाह सिफात। ठीक है, ये नहीं कि नाउज बिल्ला अली रतान के पास नहीं था, नहीं उनके पास भी था, लेकिन यहां पे हम कंपेयर करके बात कर रहे हैं ना, इन कंपैरिजन उनके पास जितना ज्यादा था उसके मुकाबले में ये वाला इल्म अली रतान के पास उतना नहीं था जितना ही उनके पास था। ठीक है ना, लेकिन मसाइल का इल्म उनके पास नहीं था इतना, उमर रजान के पास मसाइल का इल्म नहीं था, इनसे पूछते थे मसाइल हैं। इतने सारे वाकयात हैं कि उमर रजान से किसी ने मसला पूछा, उनको पता नहीं था, अली रजान से पूछो भाई है, मुझे तो याद नहीं है मसला, मुझे तो नहीं याद। कभी जो है वो नाउ गलती भी हो गई भाई, ऐसे उमर रजान जैसे हैं, गलती हो गई मसला बता दिया अली रजान बाद में, उमर रजान ऐसे मसला नहीं है मसला ऐसे नहीं, ऐसे होता है उमर रजान, अच्छा भाई तुम ही पता है दादा मुझे, सही है बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है यार, इसको का अपना कोई अना का मसला है, मैं खलीफा हूं, तुम क्या बता रहे हो मुझे, मैं खलीफा हूं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म के लोग थे, बहुत ही हम्बल लोग थे वो। ठीक है ना, जो सच बात होती थी उसको एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं होता था। ठीक है, तो ये सिफात है सहाबा कराम की जो कि हमें भी सीखनी चाहिए ना, और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अच्छा, तो अली अतान के इल्म के बारे में फिर एक 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 और कौल लिखा हुआ है हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह का। वो फरमाते थे कि मा काना अहदुम मिनन्नासी, कोई नहीं इंसानों में ऐसा जो के कहता हो यकूलू सलूनी, पूछो मुझसे जो पूछना है, कोई ऐसा नहीं है जो के मुझ जो कह सके, पूछो मुझसे जो पूछना है, गैरा अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब के अलावा। ठीक है ना, यानी कोई सवाल है जस्ट एस्क मी, राइट, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम की जो मशहूर हदीस आपने भी कही कि अना मदीनतुल इल्मी व अली युबाबुहा, ठीक है, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली जो है वो उसका दरवाजा है। जी
तो आपके दौर में
हाँ, ये वाक्य आप आपको बताया भी था किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया था, और ये एक्सक्यूज मी आगे जो है ये आ भी रहा है किताब में भी लिखा हुआ है वाक्य। ठीक है, कि वो क्यों इतने मसले हैं आपकी खिलाफत में, वो खारजी था, वो उसने आगे इस तरह से ना एतराजी सवाल किया था, तो भी उसको एतराजी जवाब दिया था, उसको कहते इल्ज़ामी जवाब दिया था बल्कि, है ना, कि जब वो खलीफा थे ना तो मैं और उस्मान जो है वो उनके मुशीर थे, और जब मैं खलीफा बना और उस्मान खलीफा बने तुम्हारे जैसे लोग हमारे मुशीर, तो जाहिर सी बात है मसले तो होने से, इसको इल्जामी जवाब कहते हैं, पलट दो अगले बंदे के ऊपर ही ना। ठीक है, बहरहाल, तो अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा। क्या मतलब है इसका? कि जो शहर है इल्म का वो तो मैं हूं, ठीक है, लेकिन शहर में एंटर होने के लिए अली, ठीक है। तो अली की रजान के पास जो इल्म हमें नजर आता है, ठीक है ना, वो क्या नजर आता है? मसाइल का इल्म नजर आता है, कुरान मजीद के फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म नजर आता है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का इल्म क्या था? इल्म नबुवत, इल्म मारिफत, है ना, इंतहा दर्जे की, सबसे ज्यादा इल्म नबी अलैहिस्सलाम के पास। और नबी अलैहिस्सलाम के जो सबसे करीबी वुजरा थे, अबू बकर सिद्दीक रहा था और अली रहा था, इनके पास भी इल्म नबुवत और इल्म मारिफत, ठीक है ना। तो ये गोया के जैसे ये कमरा है, इस कमरे को आप समझें मदीनतुल इल्म, ठीक है ना, हम भी माशाल्लाह इल्म की बातें कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो दरवाजा है ना, उस दरवाजे से एंटर होगे तब इस कमरे में आओगे ना, उसके बगैर तो कमरे में नहीं आ सकते। दरवाजे के बगैर कोई रास्ता नहीं है कमरे में आने का। वो दरवाजा क्या है? शरीयत के अहकाम, ठीक है ना, जो शरीयत के मसाइल भी कहते हैं। ये नहीं हो सकता कि तुम शरीयत के मसाइल को बाईपास करके किसी और तरीके से मारफत हासिल कर लो, किसी और तरीके से जो है वो नबुवत का इल्म हासिल कर लो, और जो है वो रूहानियत हासिल कर लो, और जो है वो अल्लाह के कुर्ब हासिल कर लो, और जो है वो पता नहीं क्या बन जाओ, है, हवा में उड़ने वाले बन जाओ या जन्नत में पहुंचे। नहीं, एक ही रास्ता है, शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। उसी दरवाजे से एंटर होगे तब तुम्हें रूहानियत मिलेगी, तब तुम्हें मारफत मिलेगी, तब तुम्हें अल्लाह ताला की रजा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। इस हदीस मुबारक से हम ये वाला भी मतलब और इशारा ले सकते हैं, जो कि 100% इसमें कोई हमें डाउट करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही है, हमने अपने मशाइख से ऐसा ही सीखा है, ठीक है। कितनों को समझ में आई बात? ठीक है, आ गई आपको समझ, ठीक। तो शरीयत के ऊपर अमल किए बगैर अल्लाह ताला की मदद आजकल तो मिले चली जा रही है, लेकिन उसके बगैर ही मिल रही है वैसे सारी की सारी, है, और हम बड़े खुश हैं इस बात के ऊपर, ठीक है। लेकिन शरीयत पे अमल के बगैर अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी, रूहानियत नहीं मिलेगी, मार्फत नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कर लो जो करना है, जाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, यमन की गवर्नरी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको यमन का गवर्नर और वहां का काजी बनाकर भेजा था। हजरत अली रतानानों ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र बड़ी बहुत छोटी है, अभी तो बिल्कुल इब्तदाई जवानी की उम्र है, इस जवानी की उम्र में मैं काजी बनकर जा रहा हूँ, मैं वहां जाकर कैसे फैसला करूंगा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको भेजा तो इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वहां पे तो नए मसाइल, नई चीजें पेश आएंगी, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या क्या लोगों के आपस में जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और काजी बना के आप मुझे भेज रहे हैं तो मुझे उसका फैसला करना पड़ेगा सही गलत का, ठीक है। तो इन्होंने फिर, यानी ही वॉज नॉट श्योर कि भाई मैं ये काम कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, तो उन्होंने अपना ये जो सवाल था, इश्काल था, नबी अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने मुबारक के ऊपर अपना हाथ मुबारक उनके सीने मुबारक के ऊपर रखा और दुआ दी, अल्लाहुम्महदी कल्बहु व सब्बित लिसानहु, कि ए अल्लाह इसके कल्ब को हिदायत अता फरमाइए, ठीक है ना, आप जो है ना वो इनको गाइड कर दीजिए और इनकी जुबान को जो है ना वो साबित कदम बना दी, यानी एक तो दिल में सच डाल दीजिए आप और जुबान भी उस सच की रफीक बना दीजिए, ठीक है ना, जुबान भी सच की रवि, ना हो कि दिल में तो सच है जुबान से झूठ निकल रहा है, राइट। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों चीजों की दुआ दी, ठीक है, कि दिल में सच भी डाल दीजिए और फिर जुबान से भी सच ही कहलवा भी दीजिए, पूरा काम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरी दुआ दी, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इसके बाद जो है ना, बस मैं वहां पे जो गया हूं तो मेरे सामने जब कोई मसला आता था अल्लाह ताला मुझे उस मसले का हल अता फरमा देते थे और मैं जो उसको लोगों के सामने बता देता था, मसला हल हो जाता था, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम रह गया है? बस खत्म ही होने वाला है। तो अब ये काजी की बात चूंकि शुरू हो गई है तो काजी की बात को मुकम्मल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने, देखें ये बेहतरीन काजी बन गए। तो एक आप का ये कॉल भी मशहूर है المعجم الصغير کے اندر طبرانی کی کتاب میں کہ وَأَغْوَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، کہ میری امت میں جو سب سے بہترین قاضی تھے نا وہ علی ابن ابی طالب تھے، اقوا سب سے زیادہ اچھی قضا یعنی فیصلہ کرنے والے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور حدیث مبارک جو کہ مسند احمد میں ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کا ذکر کیا، اور یہ اکثر جمعے کے خطبے میں بھی پاکستان انڈیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ والی حدیث، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جو ہے نا وہ ابو بکر ہیں، اشدہ فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین میں جو سب سے زیادہ سخت ہے نا دین کے بارے میں، ٹھیک ہے، نان کمپرومائزنگ بالکل. ویسے تو علی ابو بکر صدیق ان سے بھی بڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ذرا لائیں ذرا میں اس کی گردن اڑاؤں، وہ تو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا. تو وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی حضرت فرمایا وہ اشدہ فی دین اللہ عمر وہ اصدقہ حیاء عثمان، اور عثمان حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے، سب سے زیادہ سچے پکے حیا والے جو ہیں وہ عثمان ہیں. وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عجیب، حلال اور حرام کی علم کے اندر سب سے زیادہ رکھنے والے معاذ ابن جبل رضوان، معاذ ابن جبل رضوان، ٹھیک ہے. وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيِّ ابن كَعْب رضی اللہ تعالیٰ، أُبَيِّ ابن كَعْب رضی اللہ کو أَقْرَؤُهَا یعنی کتاب کی قراءت کے اندر سب سے زیادہ علم ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زید ابن ثابتن، ٹھیک ہے، فرائض کے علم میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. وَأَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ ابن ابی طالب، ٹھیک ہے. بہرحال کہنے کا مقصد اس میں خالی یہ ہے، حضرت نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بھائی دوسرے بھی صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس حلال حرام کا علم سب سے زیادہ آپ نے فرمایا، اور ان کے پاس جو ہے وہ فرائض کا علم سب سے زیادہ فرمایا، اور ان کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید کی قرآت کا علم سب سے زیادہ فرمایا. لیکن علی عطان کی ایک اور بھی ایک اسپیشلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ قضاء کے معاملے میں اور مسائل کے معاملے میں اور قرآن مجید کے فیکٹس اینڈ فگرز وغیرہ کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. ٹھیک ہے، بس یہاں پر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلی کلاسوں کے اندر ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، علم نافع کا سبب بنائے، اور عمل صالح کا سبب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. ترجمة